તારીખ 7/5/1995 શ્રી પરમાગમ સાર બોલ નંબર 637 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 623 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
વચનામૃત 637 પેજ નંબર 3 આત્માની પહેચાન કે વિષય મેં કલ સ્વાધ્યાય હુઆ થા ઇસી વિષય મેં સમયસાર કે પરિશિષ્ટ મેં ભી ખુદ આચાર્ય મહારાજ ને અનેક પ્રશ્ન ઉઠાએ હૈ ઔર ઉસકા ઉત્તર દેકર સમાધાન કિયા હૈ. गुरुदेव श्री ने उस विषय पर प्रवचन किए थे और परमागम सार में उसी विषय पर गुरुदेव जो कुछ बोले ये गुरुदेव श्री का वचनामृत है. प्रश्न उठाया है आत्मा अनंत स्वभाववान होने पर भी उसे ज्ञान मात्र ही क्यों कहते हैं. ज्ञान मात्र कहने से तो शेष अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है. क्या कोई समझ लेगा आत्मा में ज्ञान का स्वभाव है ऐसे दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व वीर्य प्रकाशत्व प्रभुत्व विभुत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अकर्तृत्व आदि अनेक धर्म है. जैसा ज्ञान गुण है वैसे ही सब गुण है. तो ज्ञान से क्यों पहचाना पहचानने का उपदेश दिया और मात्र ज्ञान आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा कहने से बाकी के जो गुण स्वभाव है उनका निषेध कैसे करेगा ऐसा प्रश्न उठाया है. ऐसा ऐसा संभव है. यहाँ पर एक और विचार आता है कि आत्मा अनेक गुण धर्म को धारण करने वाला पदार्थ है और आत्मा के विषय में कुछ भी कहने में आता है तब दूसरी बात कहने में रह जाती है तो विपर्यास होने का संभव होता है. विपर्यास होने कोई भी बात करो आत्मा के विषय में जैसे पहचानने के लिए ज्ञान मात्र के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है इलाज नहीं है तो और शंका उठती है कि दूसरे गुण स्वभाव तो है ज्ञान मात्र कहने से बाकी के धर्म का कोई निषेध कर देंगे तो या निषेध हो जाएगा तो या निषेध समझ लेंगे तो इस विषय में क्या स्पष्टीकरण है उसका उत्तर देते हैं. लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य आत्मा का निर्णय करने हेतु ही आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है. यहां अन्य धर्मों का निषेध करने का हेतु नहीं है. यहां तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करने से कराने का हेतु है और लक्षण जो ज्ञान है उसका एक विशिष्ट प्रकार का विलक्षण प्रकार का लक्षण है, स्पेसिफिक लक्षण है, इसलिए इससे पहचान होती है। दूसरे दूसरे लक्षण ऐसे हैं कि उससे पहचान होना संभव नहीं है। दूसरे दूसरे गुण हैं, उनसे बात करेंगे, पहचान कराई जाएगी तो पहचान नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति देख करके और कहने वाले अपने अनुभव को भी उसमें शामिल करके शास्त्र परंपरा और अपना अनुभव दोनों बात साथ में रख करके ये समाधान देते हैं कि आत्मा की पहचान ज्ञान लक्षण से ही होती है। वहां कोई अन्य धर्म का निषेध कराने का प्रयोजन और हेतु नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि शास्त्र सिद्धांत की कोई भी बात हो, किस हेतु से ये बात चल रही है वो पहले समझ लेना चाहिए, वरना कहने वाला कहना चाहेगा कुछ और पढ़ने वाला समझेगा कुछ और, ये बात हो जाएगी। तो जो कहने का अभिप्राय है वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले ही तो बता दिया, उत्तर देने में क्या कहा कि पहले ही ये तो बता दिया कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य आत्मा का निर्णय करने का हेतु से ये आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। क्यों आत्मा का निर्णय और पहचान कराते हैं? निर्णय कहो या पहचान कहो एक ही बात है। क्यों कराते हैं? कि आत्मा का ज्ञान कराने के लिए, आत्मा को अपने विषय में ही अज्ञान चला आ रहा है और अज्ञान वश वो अपने को मनुष्य देव जहां भी जन्मता है ऐसा ही मान लेता है कि मैं फलाना मनुष्य हूं। वास्तव में हम आत्मा है, मूल में हम आत्मा है और आत्मा को आत्मा जैसा है उस रूप में उस स्वरूप में स्वीकार करने से जो आत्मज्ञान होता है, उस आत्मज्ञान होने से जगत के सर्व दुख और सर्व क्लेश से का अभाव होता है और आत्मा की सुख शांति का लाभ होता है। तो इसके पीछे जो मूल हेतु है वो दुख का नाश और सुख की प्राप्ति का हेतु रहा है। श्रीमद् जी ने कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली गाथा में वो बात कहा कि जो स्वरूप जो जे स्वरूप समझा बिना पायनो दुख अनंत। इस संसार में जीव अनंत दुख क्यों प्राप्त किया कि अपना स्वरूप नहीं समझा इसलिए। तो सभी शास्त्रों में सभी आगमों में आत्मज्ञान कराना का हेतु है, चाहे आगम करणानुयोग का कर्म ग्रंथ का हो, चाहे आगम द्रव्यानुयोग मैंने पदार्थ के विज्ञान का हो, द्रव्यानुयोग मैंने पदार्थ का विज्ञान साइंस, चाहे आगम आचरण का चरणानुयोग का हो कि श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनि का आचरण अंतर्बाह्य आचरण कैसा होना चाहिए, और चाहे आगम कोई कथानुयोग का महापुरुष के इतिहास का हो पुराण का हो, सभी आगमों का एक हेतु आत्मज्ञान कराने का है। वो हेतु पकड़ करके जो आगम पढ़े समझे तो बराबर समझ में, यथार्थ समझ में आएगा। दूसरे हेतु से शास्त्र को पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ अन्यथा समझ हो जाएगी, ऐसी संभावना है। यहां कहते हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य आत्मा का निर्णय करने हेतु ही आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। आत्मा में अनंत गुण है, उसका स्वीकार है। आत्मा में एक दो चार पांच लाख करोड़ अरब, इतना नहीं, कितना है? अनंत है। अनंत का जो गिनती है वो बियॉन्ड मैथमेटिक है। जैन दर्शन का जो गणितानुयोग है वो लौकिक मैथमेटिक्स से बियॉन्ड की बात है। जैन दर्शन में संख्या के पार जाना पड़ता है, गिनते 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 आखिर का छिल्ला ऐसा धर्म है ऐसा नहीं आता है, इसका नाम अनंत है। अनंत मैंने जिसका अंत नहीं हो। आत्मा के गुण गिनने जाओ तो आखिर का गुण गिनते गिनते कौन सा आएगा? कि कोई नहीं आएगा, इतना अनंत है। इतना अनंत गुण, अनंत गुण की प्रॉपर्टी जिसमें रही है ये आत्मा की संपत्ति है। उसमें मुख्य ज्ञान आनंद शांति सुख ये मुख्य है, बाकी उतने हैं कि जितने इसके नाम भी दे सकते नहीं है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, उनमें ज्ञान मुख्य होने से वह विशेष गुण है। कितने गुण तो सामान्य है, तो दूसरे पदार्थ में भी है। जैसे आत्मा का भी अस्तित्व है, परमाणु का भी अस्तित्व है, तो अस्तित्व गुण दोनों में है। ऐसे परिणमन करने का गुण भी सभी में है, लेकिन ज्ञान गुण एक ऐसा है कि जिसमें कोई विशेषता ऐसी है कि जो दूसरे पदार्थ में ऐसा गुण पाया जाता नहीं है। उनमें ज्ञान मुख्य होने से वह विशेष गुण है। आत्मा का तीनों का लक्षण ज्ञान है। क्या कहना, क्या अभिप्राय है गुरुदेव का? तो भूतकाल में जिसने आत्मा को पहचाना, आत्मस्वरूप का निश्चय किया, वही ज्ञान लक्षण से। वर्तमान में कोई पहचानते हैं तो ज्ञान लक्षण से। भविष्य के अनंत काल में कोई पहचानेंगे तो भी ज्ञान लक्षण से ही पहचानेंगे। तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल में आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान के अलावा दूसरा लक्षण मदद करता नहीं है, पहचानने में मदद नहीं करेगा। ऐसा कहने के पीछे यह अभिप्राय है कि अगर किसी को आत्मा की पहचान करनी है, उनको ज्ञान के छोड़कर अन्य गुण के लक्षण से आत्मा को पहचानना का प्रयास करना नहीं चाहिए। प्रयास करेगा तो पहचान सकेगा नहीं। जो अनेक आगम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें ये बात विवाद की भी कभी हुई है कि सम्यक दर्शन का विषय अस्तित्व है, तो अस्तित्व लक्षण से हम आत्मा को ग्रहण करेंगे, ऐसा भी कई विद्वानों को भ्रांति होती है। उस भ्रांति का निराकरण गुरुदेव ने दिया है कि तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है। कोई काल में भी ज्ञान लक्षण के सिवा आत्मा की पहचान हो सकती नहीं, इसलिए वृथा प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा करते हैं, ऐसा होता भी है, क्योंकि शास्त्र में आत्मा के अनेक गुणों का वर्णन आता है और वो भी एक दलील निकलती है, आती है कि अनेक गुण का वर्णन क्यों किया, फिर एक ज्ञान गुण की बात करने थे, अनेक गुण की बात क्यों किया, जब दूसरे गुण से आत्मा पहचाना नहीं जाता है तो फिर दूसरे दूसरे गुण की बात करने की जरूरत भी क्या थे। ऐसा है कि जब पदार्थ का द्रव्यानुयोग का विषय चलता है तो पदार्थ जैसा है वैसी बात अनेक प्रकार की आएगी भी ही, लेकिन पहचानने का हेतु है वहां कौन सी बात आएगी, ये खास बात है, खास हेतु से वो बात चलती है। जहां पहचानने का प्रकरण है वहां तो ज्ञान के सिवा दूसरे गुण के लक्षण से आत्मा की पहचान होती है, ऐसा कभी बन सकता नहीं है। इसलिए कहा कि आत्मा का तीनों काल लक्षण ज्ञान है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है, खास प्रकार का है। अन्य द्रव्यों में परमाणु में ज्ञान नहीं है, आकाश द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, काल द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, धर्मास्तिकाय में भी ज्ञान नहीं है और अधर्मास्तिकाय में भी ज्ञान नहीं है। वो पांचों द्रव्य जड़ है और आत्मा एक चेतन पदार्थ है, उसमें ज्ञान है। इसलिए अन्य द्रव्यों में नहीं है, जानने का कार्य पर्याय से है। जानने का कार्य कौन करता है? पर्याय जानने का कार्य करती है, जानने का कार्य पर्याय के हाथ में है। मैंने आत्मा जो पदार्थ है वो पदार्थ है, उसमें एक उत्पन्न व्यय होने वाली बदलने वाली अवस्था को पर्याय कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, वो ज्ञान गुण की अवस्था है, वो जानने का कार्य करती है, इसके सिवा कोई जानने का कार्य नहीं करता है। गुण भी जानने का कार्य नहीं करता, ज्ञान गुण भी जानने का कार्य नहीं करता, दूसरे गुण भी जानने का कार्य नहीं करता, एक ज्ञान के पर्याय जानने का कार्य करती है। जानने का कार्य पर्याय से है, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय में, ज्ञान गुण शक्ति है और गुण की व्यक्ति वो ज्ञान पर्याय है। जैसे जड़ परमाणु है उसमें वर्ण नाम का गुण है और कोई न कोई परमाणु का रंग होता है, परमाणु कोई न कोई रंग को धारण करता है, तो वर्ण गुण में से अनेक वर्ण उत्पन्न होते हैं, लेकिन गुण है तो शक्ति रूप होने से उसका कोई वर्ण नहीं है। फिर से तो विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय है, परमाणु का विज्ञान अपन देखे तो उसमें जिसको रूप कहते हैं, वर्ण कहते हैं, रूप रस गंध शब्द ये सब इनका ही प्रॉपर्टी है। रस होता है खट्टा मीठा पीला, स्पर्श होता है स्मूद होता है कठोर होता है, वजनदार होता है हल्का होता है, तो वर्ण गुण है उसमें से अनेक वर्ण निकलते हैं, काले पीले नीले अनेक वर्ण किस में से निकलते हैं? वर्ण गुण में से। लेकिन गुण है वो वर्ण रूप नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं, क्योंकि वो तो पावर रूप है, शक्ति रूप है। ऐसे आत्मा जानता है, वो इनकी अवस्था है जानने की, और जानने का गुण है, जानने की शक्ति है, जानने का पावर है, इसलिए वो जानता है और हमेशा जानता ही रहता है। वो ऐसी अक्षय निधि है। क्या है? ज्ञानादि गुण की अक्षय निधि है, वो कभी क्षय नहीं होता है, जानने का बंद नहीं होता है। चार गति में कहीं भी जाए, कोई काल में कोई आत्मा को जानने का कार्य का अभाव नहीं होता, क्योंकि गुण का कभी नाश नहीं होता। वो गुण का कभी नाश, अविनाशी तत्व है आत्मा, अविनाशी तत्व है, इसके गुण स्वभाव भी अविनाशी होते हैं। हाँ, वो आत्मा जानता है, परमाणु नहीं जानता है। परमाणु की शक्ति को, एनर्जी को परमाणु नहीं जानता है, क्योंकि उसमें जानने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं जानता है। जीव उसको जानता है, लेकिन हम जड़ की कीमत करते हैं। जानने वाले ज्ञान की, ज्ञान स्वभावी आत्मा की कीमत नहीं करते हैं। जैसे मुहिरा, मूल्यवान पदार्थ क्या है? हीरा। तो एक अच्छा 2-3 कैरेट का हीरा हुए ना, हाँ, तो आज इसका लाखों रुपया का वैल्यूएशन होता है। एक हीरे का लाखों रुपया, कितना?
लाखों
रुपया। और इतना बड़ा हुए तो करोड़ों का करोड़ों उसका वैल्यू होता है। और उसकी कीमत करने वाले की कीमत कितनी? इसकी कीमत बहुत है, लेकिन हम अनजाने हैं, इसलिए हमको जड़ का मूल्य होता है, हमारे चैतन्य का मूल्य हमको आया नहीं है। वही हमारे दुख का कारण है, वही आपत्ति है हमको। इसलिए ज्ञानियों ने अपने आत्मा को जाना, पहचाना, इसका मूल्यांकन किया और उसको जानने पहचानने की कार्य पद्धति भी दिखाई। इसको वो जिसमें दिखाई उसको शास्त्र कहने में आते हैं, इनके वचन को शास्त्र कहने में आता है। वो इनके शब्द में ऐसा, सुगानी जी ने चर्चा में कभी ऐसा कहा कि आत्मा की कीमत कितनी, कि तराजू के एक पलड़े में सारा जगत को रख लो, 3 काल 3 लोग, और एक पलड़े में मेरे आत्मा को रखो, मेरा पल्ला बैठ जाता है और दूसरा पल्ला है वो उधर जाता है, ऊंचा नहीं हो जाता है, उधर जाता है। इतना मेरा मूल्य है, मुझे इतना मेरा मूल्य लगा है, इसलिए मैं जगत की परवाह किए बिना मेरा आत्मा का आराधन करता हूं और आत्मा की सुख शांति को मैं प्राप्त करता हूं। मैं एक प्रश्न निकालता हूं कि आत्मा को जो सुख शांति चाहिए ना, जगत के प्राणी, पशु हो या मनुष्य हो, देवी हो या नारकी हो, प्रवृत्ति क्यों करते हैं? सुख शांति के लिए, कि दूसरा कोई कारण है? अब मेरा प्रश्न है कि आत्मा को सुख शांति मिले तो क्या देने से मिले? क्या खर्च करने से सुख शांति मिले, ये बताओ। सुख शांति मिलने, आधा घंटा 1 घंटा सुख शांति मिलने के लिए या हमेशा के लिए सुख शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा खर्च करना चाहिए? हाँ, पैसे से मिलेगी, हीरे से मिलेगी
नहीं,
सत्ता से मिलेगी
नहीं मिलेगी।
हाँ, सत्ता वाले को पूछ लीजिए, जो दिल्ली के राजगादी पर बैठे हैं उनको पूछ लीजिए, तुमको सुख शांति कितनी है? तो क्या हमारा माथा सड़ गया है? क्या नींद आती
नहीं है?
नहीं है।
गुरु के अनुग्रह से मिले
हैं,
गुरु के अनुग्रह से मिले
सुख शांति, गुरु के अनुग्रह से मिले। ठीक है, दो बात आई, स्वभाव का आदर करने से सुख शांति मिले या गुरु की कृपा से मिले, क्या करना? हाँ, दोनों बात शास्त्र में आती है, क्या करें?
हैं, गुरु दिखाता है इसलिए पता चलता है,
हैं,
गुरु दिखाता है इससे हमको पता चलता है, और गुरु ने दिया ऐसा हम
कि आत्मा का आराधन भी गुरु कृपा बिना होता
नहीं
है। तो कृपाल देव ने लिखा है, आत्मा है वो स्वरूप से परमात्मा है, क्या मूल स्वरूप से आत्मा अप्पा सो परम अप्पा, ये हमारा सिद्धांत है। आत्मा परमात्मा है और परमात्मा का ध्यान करने से परमात्मा हम बन जाते हैं, पर्यंत परमात्मा जो बने वो स्वरूप ध्यान करने से बने, लेकिन ऐसा ध्यावन सत्पुरुष के अनुग्रह बिना कोई कर सकता नहीं है, ऐसा निर्ग्रंथ प्रवचन है। क्या लिखा है इसमें? ये निर्ग्रंथ प्रवचन है। किसका प्रवचन है? ये परमात्मा का प्रवचन ऐसा है, इसलिए गुरु कृपा को प्राधान्य दिया जाता है, इसका कारण है कि हमारी आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है, चारों गति में 84 लाख योनि में जन्म मरण हो रहा है, वनटोड़ है सारे विश्व में, जन्म मरण का वनटोड़, वनटोड़ को क्या कहते हैं? साइक्लोन। कोई जीव यहां से मर के कहीं उत्पन्न होता है, कोई कहां से मर के कहां उत्पन्न होता है, कोई कहां से, सेकंडों में बहुत मरते हैं, बहुत जन्म लेते हैं, ये साइक्लोन चलता है सारे विश्व में। इससे मुक्त होने का उपाय जो जानते हैं उसको गुरु कहने में आता है। हाँ जी,
किस नए का कथन है? ये व्यवहार नए का कथन है या निश्चय नए का कथन?
हाँ, ये नई अपेक्षा से व्यवहार नए का कथन है। बोलिए, और प्रश्न क्या है इसमें? व्यवहार ने का कथन है इसलिए झूठा है, ऐसा कहने का विचारने का है? हाँ, वो है व्यवहार ने का कथन, लेकिन कुछ अवस्था में वो भी उपयोगी होता है, प्रारंभिक अवस्था में इसका उपयोग है। अगर इसका सर्वथा उपयोग नहीं होता तो भगवान की वाणी में वो बात आती भी नहीं।
परमार्थ मूलक व्यवहार नहीं करता।
व्यवहार चार प्रकार के होते हैं, परमार्थ हेतुभूत व्यवहार और व्यवहार हेतुभूत व्यवहार, ऐसे इनके चार भेद है। व्यवहार हेतुभूत, परमार्थ हेतुभूत, और दूसरे भी दो है, कृपाल देव के पत्र में आते हैं, स्मरण में नहीं रहे। तो ये परमार्थ हेतुभूत व्यवहार है। कुछ व्यवहार तो व्यवहार हेतुभूत भी व्यवहार होते हैं और कुछ व्यवहार परमार्थ हेतुभूत होते हैं। तो ये परमार्थ हेतुभूत व्यवहार है, जिस स्थान में जो बात होती है उस स्थान में उसका स्वीकार करना चाहिए।
आपने अभी बोला प्रारंभिक अवस्था में भी उपयोगी है।
हाँ,
तो सब स्टेज में उपयोगी
है। छठे गुण स्थान तक मुनिराज है वो अपने गुरु को विशेष रूप से विनय करते हैं, विशेष रूप से विनय। अमृतचंद्र आचार्य ने वो विनय किया कि हमारी परिणति अनादि से मलिन थी, हमारी दशा अनादि से मलिन थी, गुरु के अनुग्रह से अब इसमें विशुद्धि आई है। आइए अपने पुरुषार्थ से फिर कहेंगे का क्या, गुरु के अनुग्रह से आई है, क्योंकि गुरु का अनुग्रह नहीं होता तो शायद हमारे में ये विशुद्धि नहीं आती। गुरु का अनुग्रह तब होता है कि हम हमारा आत्म कल्याण के लिए अग्रसर होते हैं, तब होता है। वो तो निमित्त उपादान का जो मेल है वो मेल है। हर जगह से कोई भी बात हो, हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, ऐसा हमारा जो प्रयोजन है या स्वार्थ है, चालू भाषा में क्या कहेंगे, स्वार्थ है, वो स्वार्थ को देखना है। पक्के स्वार्थी हो जाना, क्या
पक्के स्वार्थी,
अपना आत्म कल्याण का जो अर्थ नाम प्रयोजन, स्व अर्थ स्व प्रयोजन, स्व अर्थ मैंने स्व प्रयोजन, उसमें पक्का हो जाना है। चाहे बात गुरु की आए चाहे बात आत्मा की आए, अपना प्रयोजन कैसे होता है। हमारे यहाँ ये प्रश्न उठता है कि गुरु सत्पुरुष आदि की बातें में निमित्ताधीन दृष्टि तो नहीं हो जाती, तो गुरु की बात में निमित्ताधीन दृष्टि का तर्क उठा, लेकिन 24 घंटे में निमित्ताधीन परिणमन हो रहा है वहां तर्क क्यों नहीं उठा। एक सेकंड बता दो बिना निमित्त परिणमन करते हो, ऐसा निमित्ताधीन ही संसारी जीव परिणमन कर रहा है, एक सेकंड बता दो कौन सी पर्याय निमित्ताधीन। निमित्ताधीन परिणमन को ट्रांसफर करके सत्पुरुष और सदगुरु के चरण में आ जाओ, फिर उपादान हाथ में आ जाएगा। इसके पहले कभी किसी को उपादान हाथ में आया नहीं है। ऐसी एक वस्तु स्थिति है, पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित एक वस्तु स्थिति है, उसका स्वीकार करना चाहिए।
परिपूर्ण रूप से ट्रांसफर हो
तो हाँ ठीक है। श्री गुरु के चरण में सर्वार्पण बुद्धि से कोई आ गया तो इस भूमिका का वो आत्मज्ञान के स्टेज में आ गया, सम्यक्त्व के स्टेज में वो आ गया। 751 में पहला संकेत लिया है, आज्ञा रुचि रूप संकेत लिखा के नहीं लिया 751 पत्र में। तो हमारा स्वार्थ कैसे सधे, उससे हमारा मतलब है हमको वाद विवाद में जाना नहीं चाहिए। जानने का कार्य पर्याय से है, ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा ही जानने वाला सो ही आत्मा, ऐसा लक्ष्य रूप आत्मा निशंक रूप से प्रसिद्ध होता है। क्या कहते हैं, जानने का कार्य पर्याय से है और ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा, मैंने प्रकट अवस्था द्वारा ही जानने वाला सोही आत्मा, मैंने जानने वाला सोही में आत्मा, मैंने मैं आत्मा, मैंने थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, आत्मा मैंने फर्स्ट पर्सन, जानने की अवस्था से जानने वाला है सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मा का लक्ष्य निशंक रूप से प्रसिद्ध होता है। दूसरे कोई गुण से ऐसा आत्मा का ज्ञान होने का संभावना नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकरण में अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने जानने की बात को छोड़ करके वेदन की बात को लिया है। लक्षण में समय सार के जो परिशिष्ट की बात है उसमें वो बात लिया है कि प्रसिद्ध ही ज्ञानम, जो ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ही है। मात्र ज्ञान मैंने अकेला ज्ञान, राग से भिन्न होने वाला ज्ञान, राग से भिन्न पड़ गया ऐसा ज्ञान, ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन से उसकी प्राप्ति है। लक्षणों से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है? स्वसंवेदन से लिया है वह। क्यों स्वसंवेदन से लिया है ये प्रश्न आप कर सकते हो कि जानने का स्वपर प्रकाशक होता है परंतु वेदने का स्वपर वेदकत्व होता नहीं है। फिर से, ज्ञान का जानने का कार्य स्व को भी जाने और पर को भी जाने, तो पर को जाने ऐसा आत्मा का लक्षण से आत्मा की पहचान नहीं होगी। अगर इससे पहचान होती तो हो जाती कभी की, क्योंकि पर को तो जानते ही रहते हैं, अन्य पदार्थ को तो जानते ही हैं। तो स्व को जानना कैसा के वेदन से जानना, स्व को जानना ऐसा नहीं लिया है, वेदन से जानना ऐसा लिया है, तभी आत्मा का ज्ञान होता है। इसी लक्ष्य लक्षण की चर्चा में वेदन लक्षण दिया है, जानने वाला लक्षण नहीं दिया है। लेकिन वेदन सबको अनुभव में नहीं आता है, ज्ञान वेदन, इससे जानने से ज्ञान को समझाते हैं। देखो जानता है वो आत्मा है, देखो जानता है वो आत्मा है, लेकिन जानता है मैंने इसको जानता है उसको जानता है वो बात नहीं लिया है। जानना सामान्य है, वो सामान्य ज्ञान वेदन रूप है, ऐसा करके वेदन तक ले जाते हैं, ऐसी बात है। नहीं, कोई फेर नहीं, वेदन और अनुभव एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। वेदन कहो, अनुभवन कहो और भोगना कहो, वेदन कहो, अनुभवन कहो और भोगना कहो, भोगवता, तीनों एक ही पर्याय का तीनों शब्द है, एक ही अवस्था का तीनों शब्द है।
वेदन तो केवल ज्ञान का ही है, अन्य का वेदन नहीं
हो ही नहीं सकता, कोई का वेदन नहीं हो सकता। सुख को जानता है, वेत्ता नहीं है, लेकिन ज्ञान सुखरूप भी है। और ज्ञान और सुख पदार्थ की अपेक्षा से अभेद होने से सुख को भेदता है, ऐसा अभेद नहीं से बोला जाता है, भेद नहीं से वो बात नहीं है। थोड़ा विषय सूक्ष्म पड़ेगा, बात सूक्ष्म है। देखिए, जब सम्यक दर्शन होता है आत्मानुभव होता है तब आत्मा के सुख गुण में से एक सुख की अवस्था उत्पन्न होती है और ज्ञान स्वयं सुख रूप भी है। जानने वाला ज्ञान भी उसका रूप भी सुख है। ज्ञान बहुत रूपाला है, स्वरूपवंत है, सुख उसका रूप है। तो सुख रूप ज्ञान वेदन में आता है और साथ साथ सुख की पर्याय का भी ज्ञान होता है और दोनों में भेद तो रहता नहीं या विकल्प नहीं है, इसलिए एकाकार रूप से सुख का अनुभव होता है। जब सम्यक दर्शन होता है तो सुख का अनुभव एकाकार रूप से होता है, ऐसे आनंद का होता है, ऐसे शांति का होता है, क्योंकि विकल्प नहीं है, निर्विकल्प अनुभव है। इसलिए वहां दो गुण भेद तो समझने के लिए है, अनुभव में वो बात आती
नहीं,
नहीं है।
वो जानता है, ज्ञान को देखता
है। हाँ, सुख को जानता है और सुख रूप ज्ञान को वेदता है, ऐसा भेद विवेकता से समझना है। अनुभव में ऐसा भेद है
नहीं,
वो भी साथ में समझ लेना, वरना तर्क वितर्क हो जाएगा। अनुभव को समझ लेना। क्योंकि ज्ञान रूपवंत होने पर भी प्रश्न वो है, इसका रूप क्यों नहीं देखने में आता, कि हमने ज्ञान का रूप क्या है ऐसा उद्देश्य धारण करके ज्ञान का रूप देखने की चेष्टा और प्रयास नहीं किया है। इसलिए हमने शरीर का रूप देखने का प्रयास किया है, क्या शरीर का रूप देखने के हम लालायत हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का रूप देखने का हमको कभी जिज्ञासा हुई नहीं है। आत्मा इतना स्वरूपवान है, उतना स्वरूपवान है कि इसका रूप एक दफे देखने तो ये पुद्गल का मुर्दे का रूप देखने का उनको कोई रस आएगा
नहीं,
नहीं। छूट जाएगा। और देखिए कि जब अरिहंत भगवान समूह शरण में जिनेन्द्र परमात्मा विराजमान होते हैं तो इंद्राणियां नृत्य करती है, इंद्र इंद्राणियां सब नृत्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो नाचने लग जाते हैं। भगवान आंख नहीं खोलते, नथी अग्नियो मा तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूप डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। स्वरूप में डूब जाते हैं वो, क्यों कि इतना रूपवंत अपना स्वरूप है, उसमें डूबे हुए रहते हैं, वो इंद्र इंद्राणी का रूप को देखते
नहीं
है। एक अंश एक डिग्री का एंगल भी आंख का ऊंचा नहीं होता है, ना के रूप निहारता, नासिकाग्र दृष्टि है, अपना रूप नाक से देखते हैं, नाक से ही रूप होता है, चेहरे का रूप भी नाक से होता है, वो अंतर्मुख होकर के जानते हैं। उसका एक दृष्टांत गुरुदेव बहुत अच्छा देते थे कि अमावस्या की अंधारी रात हो और सरोवर का पानी शांत हो, तरंगे नहीं उठी हो और पानी में देखे तो पानी में जो तलवा है वहां तक नजर पहुंच जाती कि नीचे पत्थर पत्थर पड़े हैं, उस पानी में आकाश में रहे हुए अगणित तारे का प्रतिबिंब पड़ता था, तो पानी भी देखा और तारा भी
देखा,
लेकिन तारा तारा के सामने देख करके देखा या पानी के सामने देख करके देखा, तो पानी के सामने देखकर देखा। ऐसे ज्ञान में सारा जगत का प्रतिबिंब पड़ता है और देखते अपने आत्मा को साथ साथ वो भी दिख जाता है, एक में दो का ज्ञान होता है, उसको सोपर प्रकाशकपणा कहने में आता है, उसी का नाम सोपर प्रकाशकपणा है। पर के सामने होकर के पर को देखे वो पर प्रकाशकपणा नहीं है, वो तो विभाव है ज्ञान का, प्रसन्नमुखता तो ज्ञान का विभाग है, चंचलपना है, वो तो अवगुण है, गुण नहीं है वो। एक प्रश्न आया है, वेदन और स्वसंवेदन में क्या अंतर है? वेदन सामान्य ज्ञान, वेदन को वेदन कहते हैं, पर स्वयं के रूप में वो वेदन आता है तब उसको स्वसंवेदन बोलने में आता है, और वहां तक वो वेदन वेदन है लेकिन मालूम नहीं पड़ता। मालूम पड़ता तो स्वयं के रूप में ही मालूम पड़ता है, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। वेदन से स्वसंवेदन में आने की विधि बताएं। स्वरूप से अनुभव में आने वाला वो ज्ञान है। स्वसंवेदन किसको कहते हैं? कि स्वपने अनुभव में आने वाला ज्ञान वो स्वसंवेदन है। आने वाला ज्ञान वो स्वसंवेदन है। तो उस स्वसंवेदन में आने की विधि 15 गाथा समय सार की जो है, उसमें ज्ञान विशेष को तिरोभूत करना। क्या? ज्ञान विशेष को तिरोभूत करने का, निराकार ज्ञान को गौण करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से प्रकट रूप स्वसंवेदन अनुभव में आ जाएगा। लेकिन वो होता है कब, वो सवाल है। ये तो एक बात समझ लिया, जान लिया, होता है कब कि आगे की मुमुक्षुता की जितनी भी भूमिका है वो भूमिका को ग्रहण करके होता है। सीधा किसी को होता नहीं है, उसमें बीच में सत्पुरुष की पहचान और सदगुरु का स्वीकार बीच में आ जाता है। यही क्रम है, क्रम से ही काम होता है। क्रम भंग कभी काम होता नहीं है। कोई क्रम भंग काम करना चाहता है उस उतावल से, तो उतावली वे फिर अवधारे फरे, ऐसी बात हो जाती है, उनको और तकलीफ हो जाएगी। क्या है कि अंतरंग पहलू को देखने कौन जाएगा? बहिरंग पहलू। तो बहिरंग पहलू से इधर से हट करके इधर आना होगा, अंतर्मुख होना होगा, बस बात खत्म। फिर दो बात रहते नहीं, अंतरंग बहिरंग वाली दो बात रहते नहीं, एकाकार हो गया, बात खत्म। ऐसी बात है। हमेशा ऐसा नहीं है। जब बहिरंग पहलू अंतर्मुख होता है तो स्व प्रकाशक हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हमेशा ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, स्व प्रकाशक तो है, तो पर का नास्ति रूप ज्ञान है। वह क्या है? निर्विकल्प शुद्धोपयोग में उपयोग तो एक ही ज्ञेय का ग्रहण करेगा, उपयोग दो ज्ञेय का तो ग्रहण करता नहीं, पर स्व पर तो विरुद्ध है। तो फिर शुद्धोपयोग के काल में स्व पर प्रकाशक का अभाव हो गया कि नहीं? वह आनंद है वो पर है, सुख है वो पर है, उसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान का वेदन स्व है और आनंद है वो पर है, तो वहां जाना कि नहीं आनंद को? और अब एक आनंद को जाना, लेकिन वो तो अंदर अंदर की बात हुई। हाँ जगत का पदार्थ के विषय में क्या करेंगे? स्वविकल्प दशा में आने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि को ज्ञानी को आप पूछो कि आपको अकेले आत्मा का अनुभव हुआ कि हाँ, कि दूसरे का भी अनुभव हुआ कि दूसरे का तो नहीं हुआ, तो तो दूसरे का नहीं हुआ ऐसा ज्ञान कहां से हुआ? आया कि नहीं आया? पर प्रकाश नास्ती रूप ज्ञान आता है, अस्थि में नास्ती रूप ज्ञान एक साथ होता है। ऐसा वस्तु भी अनेकांतात्मक है और ज्ञान भी अनेकांतात्मक है, ऐसी बात है। हाँ, और विकल्प तो पर रूप है, लेकिन आत्मस्वरूप का विकल्प करना वो भी आत्मा का धर्म
नहीं है,
वो स्वभाव रूप नहीं है, वो विभाव रूप है। हाँ, आत्मभाव में थोड़ा कन्वे कर लो, नहीं तो दूर पड़ता है। क्या प्रश्न है? आत्मभाव, मैंने आत्मा में अहम भाव, उसको आत्मभाव कहते हैं। आत्मभाव किसे कहते हैं? आत्मा में मैं पड़ा हुआ, मैं आत्मा, ऐसा जो भाव है आत्मा में अहम भाव, वही आत्मभाव है। और वो निर्विकल्प है, स्वविकल्प होता है उतना राग है, जितना स्वविकल्पता है उतना राग है, बाकी भाव है सो भाव है, वो निर्विकल्प है। क्यों? कि अपने में भेद रखने की कोई जरूरत नहीं है, घर में पर्यापन रखने की जरूरत
नहीं है।
क्या कहते हैं गुरुदेव? कि जानने का कार्य पर्याय से है, ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा ही जानने वाला सो ही मैं, आत्मा मैंने मैं, ऐसे लक्ष्य रूप अपना आत्मा, अपना स्वरूप निशंक रूप से, निसंशय रूप से, निश्चित रूप से प्रसिद्ध होता है, मैंने निश्चय में आता है, भाव भाषण में आता है, इसका नाम प्रसिद्ध होता है। व्यवहार, राग, दया, दान, भक्ति आदि के जो शुभ भाव के परिणाम हैं, अरे शास्त्र वांचन के, उसके द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, यानी उसके द्वारा आत्मा की पहचान नहीं होती। किसी भी प्रकार के शुभ राग द्वारा आत्मा की पहचान नहीं होती, ज्ञान से पहचान होती है, शुभ राग से पहचान नहीं होती है। दो भाव अलग अलग छांटना चाहिए भेद ज्ञान करके, राग अलग भाव है, ज्ञान अलग भाव है, दोनों को मिक्स नहीं करना। आत्मभाव कहकर के राग और ज्ञान को एक नहीं करना, वो तो अनादि से कर रहे हैं और उससे तो हम परेशान हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग रखना। ज्ञान ज्ञान है, राग राग है, राग है सो ज्ञान नहीं, ज्ञान है सो राग नहीं, ऐसा लेना है। आत्मजनित भाव की दिशा अंतर्मुख होती है और मन जनित भाव की दिशा बहिर्मुख होती है। आत्मजनित भाव में अकेला एकाकार चैतन्य स्वभाव होता है और मन जनित भाव में राग की मलिनता आती है। आत्मजनित भाव निराकुल सुखरूप होता है और मन जनित भाव आकुलता वाला दुखरूप होता है। आत्मजनित भाव पवित्र शुद्ध होता है और मन जनित भाव मलिन होता है। ऐसे बहुत से फैक्टर है कि जिससे आत्मजनित भाव और मन जनित भाव अलग अलग जानने में, पहचानने में आ सकता है, लेकिन इसके लिए अवलोकन चाहिए, ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस चाहिए, निरावलोकन सतत चलना चाहिए। इसके बिना वो बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तो प्रैक्टिकल साइड की बात है, इसलिए ऐसे समझ में नहीं आती, उसकी प्रैक्टिस होना मांगता है। सुबह प्रैक्टिस चालू कर दिया, सुनते ही चोट लगी और सुनते ही प्रैक्टिस प्रयास चालू कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुन करके बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन, आ हा हा बहुत अच्छा प्रवचन, बस राजी हो गया हम, प्रयास तो प्रयास में कुछ नहीं, प्रवचन सुना प्रयास क्या किया, पूछो किसी को वैज्ञान का कितना प्रयत्न करते हो, कितनी सेकंड करते हो, कितनी मिनट करते हो, जो कितने घंटे और सतत करना चाहिए, रात दिन करना चाहिए, सेकंडों में नहीं करते, और प्रवचन बहुत बढ़िया। तो ये मात्र सुनने से संतोष लेने की बात है, और कर्णेन्द्रिय को प्रिय लगा, मनोरंजन हो गया, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई संगीत नहीं है, तो मनोरंजन कर ले, ये तो अध्यात्म का प्रवचन है, आत्मकल्याण का विषय है, उसका प्रैक्टिस चालू कर लेना चाहिए। पीछे करेगा, अभी नहीं करना है, उधारी का धंधा है अभी नहीं करना है, कल करेगा। जिसको आज नहीं करना है और जिसको कल करना है, उसको करने की नियत नहीं है, और उसको कार्य करने का बहानाबाजी बहुत है, आज हमको वो काम है वो काम है, वो अपने आत्मकल्याण में बेईमान है। क्या है? बेईमान है, थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन ईमानदारी नहीं है उसको। इसलिए ईमानदारी से काम करना है, काम करना तो ईमानदारी से करना, वरना मत करना, लेकिन बहानाबाजी करना नहीं, कल करेंगे कल करेंगे, वो काम निपट जाएगा वो काम निपट जाएगा, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, अरे अभी अभी जिसको करना है उसको ही करना है, बाकी को करना नहीं है।
सत्पुरुष के प्रति का जो भाव है वो ज्ञान की पर्याय है कि राग की पर्याय है?
सत्पुरुष की पहचान किया तो ज्ञान की पर्याय है, और पहचान नहीं किया तो राग की पर्याय है। पहचान ज्ञान करता है, राग नहीं करता है, राग है तो अंधा है, राग क्या है? ज्ञान देखने वाला है, और राग है तो अंधा है, वो देख सकता नहीं, इसलिए राग और ज्ञान को कभी एक करना
नहीं,
अलग ही रखना। हाँ ठीक है, स्वाध्याय में लेसन मिलता है, होमवर्क मिलता है, प्रैक्टिस करके होम करके होमवर्क करके आना। साथ नहीं बोलती है ऐसा करो, हमेशा हमेशा आया करो, शिविर में आना उतना मत रखो। हमारे कांति भाई है, ये हमारे मंदिर के ट्रस्टी है, लेकिन वो आते हैं ईद का त्यौहार होता है ना, ईद का चांद है वो, तभी दिखने में आते हैं ईद के चांद है वो, तो फिर बोलते कि वो हमारी चांद नहीं बूढ़ती है तो कहाँ से बूढ़ेगी। बात थोड़ा ऐसा है कि देखो, हम एक लड़के को 2-3 साल का होता है तो उसको किंडरगार्टन में केजी में बिठा देते हैं आजकल, तो पहले 5 साल से बिठाते थे स्कूल में, फिर प्राथमिक स्कूल, फिर कॉलेज, कॉलेज पूरे होना डॉक्टर हुआ तो फिर उसका प्रैक्टिस 2 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है, और फिर उसको जो डिग्री मिली वो बाजार में दुकान बैठने का उसको परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता। एक पेट भरने के लिए कितना साल का मजदूरी करना पड़ता है, 2 साल से 22-23 साल 20 साल तक, 1 जनरेशन पीरियड। यहाँ तो 6 महीने में काम हो जाएगा, बहु भ्रमण का नाश हो जाएगा अगर प्रैक्टिस चालू किया तो। प्रैक्टिस नहीं करे तो वृद्ध हो जाएंगे, सुनते सुनते बाल सफेद हो जाएंगे, कुछ हाथ में आएगा, वो बात है। ठीक है, रात को जानता है, रात का वेद, रात को वेदता वेद सकता भी नहीं, वो समीसार के 92-93-94 गाथा बोलती है कि रात को वेद सकता नहीं है, तो राग में आकुलता है लेकिन अध्यासित भाव से आकुलता का अनुभव करता है, वेद सकता नहीं है।
उनके प्रयास हो जाना चाहिए कि यहाँ सुन ले फिर घर जाके प्रयास होना चाहिए,
नहीं सुनते ही प्रयास चालू कर देना, चाहे घर जाके नहीं,
प्रयास का क्या स्वरूप,
यहाँ से ही चालू करना। प्रयास का स्वरूप वो है कि जो बात हम समझे वही हमारे परिणमन में लागू करना चालू कर दे। राग और ज्ञान भिन्न है, सुगनी जी ने क्या सुना, राग और ज्ञान भिन्न है, तो अपने में देखने लगे, सीधा नहीं देख सकते, गुरुदेव ने देखा पहले, गुरुदेव से सुना नहीं था, गुरुदेव को परिणमते हुए देखा उसी वक्त, तो वो जो प्रैक्टिस करने की जो कला है, टेक्निक है, उसको हाथ में आ गई। सुनने से वो कला हाथ में नहीं आते, परिणमन देखने से परिणमन करने की कला हाथ में आते, तो उसने परिणमन का प्रैक्टिस चालू कर दिया। बस 24 घंटे में तो स्वानुभव लेकर के भव भ्रमण का नाश करके धर्मात्मा बन गए, कोई भी बन सकता है। हाँ ये बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां और भी सैकड़ों भाई बहन बैठे थे, उन सबों ने गुरुदेव को परिणमते हुए नहीं देखा, और उसने क्यों देखा और कैसे देखा, वो प्रश्न बढ़िया है। तो आत्मकल्याण के लिए बहुत छटपटाते थे, हम उतने छटपटाते नहीं है, हमको उतनी गरज नहीं है जितनी गरज वो लेकर के आए, तो उतनी निर्मलता नहीं थी, देखने के लिए निर्मलता चाहिए। गुरुदेव के निर्मल परिणमन को देखने के लिए देखने वाले को भी निर्मलता चाहिए, मलिन भाव से निर्मलता को देख सकते नहीं है, नहीं है। तो पात्रता तैयार होनी चाहिए, वो पात्रता लेकर के आए थे तो परिणमते हुए देखा और परिणमन हो गया। हाँ प्रीति चिते न, प्रीति चित्त ने सुना, प्रसन्न चित्त से सुना, उसी को प्रसन्न चित्त कहते हैं। हम सुने और प्रैक्टिस नहीं करे इसका मतलब कि हमारा सुनते वक्त प्रसन्न चित्त नहीं है, ये बात है। बहुभाव तो क्या होता है कि सुनने वाला सुनता भी है और इधर उधर की पंचायत भी करता है, कौन आया कौन गया, कौन कहाँ देखता है, कौन क्या देखता है, कौन कैसा बात करता है, कौन कैसा करता है, वही पंचायत में सुनते 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 अनसुना हो जाता है। इसमें मतलब किसमें परिणाम देखने में, नहीं वो क्रम में आए थे, पात्रता के क्रम में आए थे। क्रम विप्रयास से तो काम होता नहीं, उसका तो काम हो गया, इसका मतलब कोई क्रम विप्रयास उनमें था
नहीं।
यहाँ तक रखे।